गोरखनाथ ने कहा, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथीबो ब्रह्म ज्ञान। हंसते खेलते चिंतन की धारा उन्नत कर दो, अहर्निश ब्रह्म परमात्मा की चर्चा सुनो सुनाओ। सिंधी जगत के महापुरुषों ने कहा, जा पसण प्रिन जो जा प्रिन संधि पचार, तिन बिनी खाधार कादृश लकें खे न करें। या तो प्रभु मैं तेरी लीला को तुझे निहारू, या तो तेरी लीला को निहारू, या तो तेरी लीला का बयान करने वाले प्यारे संतों को निहारू, उन्हीं का संग दिया कर। नर्स को देखते तो हॉस्पिटल याद आती है, और खाकी वर्दी वालों को देखते तो थाना याद आता है, काले कोट वाले को देखते तो कोर्ट कचहरी याद आती है, और बाबा को देखते तो तेरी याद आती है ना यार। कबीरा दर्शन संत के,
कबीरा दर्शन संत के,
साहिब आवे याद,
साहिब आवे याद,
लेखे में वो ही घड़ी,
लेखे में वो ही घड़ी,
बाकी के दिन बाद,
बाकी के दिन बाद,
हरि हरि ओ हरी सम जग कछु
नहीं,
हरी सम जग कछु
वस्तु नहीं,
प्रेम पंथ सम पंथ,
प्रेम पंथ सम पंथ,
सदगुरु सम सज्जन नहीं,
सदगुरु सम सज्जन नहीं,
गीता सम नहीं ग्रंथ,
गीता सम नहीं ग्रंथ,
हरि हरि ओ
गीता भगवान की अनुभव पोथी है। श्रीमद् भागवत व्यास जी की समाधि भाषा से युग युगांतर की भगवत लीलाओं का वर्णन करने वाली वाणी है। श्रीमद् भागवत की कथा से भगवान के स्वरूप का भान, जीव के स्वरूप का ज्ञान और संसार के नश्वरता का भान करा के इस माया दलदल में, षड्विकारों में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए जीव को सब दुखों से सदा के लिए निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति कराने वाली भगवत रस से संपन्न कथाएं व्यास जी ने 17 पुराण रच डाले। फिर भी व्यास जी को लगा कि मेरा लोक मांगल्य का कार्य कुछ अधूरा सा लगता है। सेवा करके जो पूर्णता का एहसास होना चाहिए, आत्मतृप्ति संतोष होना चाहिए, वो नहीं लग रहा। तब नारद जी ने कहा कि आपने कलयुग के दोषों को ख्याल में रखते हुए शराबी कबाबी और दुराचारी लोगों को भी धर्म में लगाने के लिए कुछ छूट छाट और कुछ नियम व्रत में व्यवस्था बताई, लेकिन व्यास जी, जब तक मनुष्य को रस नहीं आएगा तब तक कितना भी आप छूट छाट दो, वो रस के लिए कुछ न कुछ मनमाने कर्म करेगा और उसका फल उसको दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन की मांग है रस, क्योंकि उसका मूल स्वरूप रस स्वरूप ईश्वर से प्रकट हुआ है। रसो वैसा वैश्वानर। तो व्यास जी भगवान का जो प्रेमा अवतार है, रसमय अवतार है, वह श्री कृष्ण अवतार का आप चिंतन करते करते समाधिस्थ होइए और युग युग में श्री कृष्ण की हास्य रस, वीर रस, बाल रस, कारुण्य रस, लीला रस भिन्न भिन्न रसों के द्वारा जीव जो भगवत कथा सुनेगा तो उसको रस आता जाएगा और भगवान के स्वरूप का भान होता जाएगा और एक बार भगवान की महिमा का पता चल जाए अथवा जगत की तुच्छता का ठीक से ज्ञान हो जाए तो जीव बेचारा बंधनों से मुक्त हो जाएगा, पीड़ाओं से, तनावों से, कष्टों से इसका मंगल होगा। भगवान व्यास को नारद जी के वचन सारगर्भित लोक मांगल्य से संपन्न आत्मसात करने जैसे लगे। व्यास देव ने एकांत आश्रम में उस महापुरुष जब आए स्वागत किया, गए विदाई थी, जाने वाला जाए तो सज्जनता इसी में है कि अपन भी 5-25 कदम उसके साथ उसको विदाई करना, ये शालीनता है। व्यास जी ने नारद जी को विदाई भी दी शालीनता पूर्वक। व्यास भगवान 8-8 घंटे समाधि करने में अभ्यस्त थे। उस महापुरुष ने संकल्प किया कि भगवान युग युग में अवतार लेकर आते हैं, मंद सुगंध हवाएं चलती हैं, दिशाएं मंगल, मैं भगवान का मानो दीदार करने के लिए अपने पूरे उत्साह से उभर आती, पक्षियों के किलोल, फूल खिले, धरती में सार तत्व की अधिकता, यहाँ तक कि गौएं चारा चुगना भूल जाए और कृष्ण को निहारने लग जाए, बछड़े दूध पीना भूल जाए और टकुर टकुर देखते रहे, ऐसा प्रेमा अवतार कैसे कैसे धरती पर आता है और क्या क्या लीलाएं करता है, इस संकल्प से वो महापुरुष समाधिस्थ हुए। तो धीरे धीरे वे लीलाएं दिखने लगी। उन लीलाओं का श्लोक बद्ध करके ग्रंथ बनाना, तो बार बार समाधि करना और बार बार ग्रंथ बनाने के लिए श्लोक बद्ध लिखना व्यवधान सा लग रहा था। भगवान गणपति जी को समाधि करके मन ही मन आवाहन किया और लोक मांगल्य के लिए, हे गजानंद प्रभु, आपकी मति और संयम अद्भुत है, पार्वती से बढ़कर कोई सती साध्वी नहीं और गणेशात परोवशी ही, गणेश जी से बढ़कर कोई इंद्रिय संयम में बराबरी नहीं कर सकते, आप संयम की मूर्ति और आपके नाम का गम गणपतये नमः जप करने वाले के विघ्न हटाने की मति गति और उसकी आभा तैयार हो जाती। प्रभु मुझे इस लोक मांगल्य में आप सहायता करिए। गणपति जी ने सहर्ष व्यास जी का सुझाव स्वीकार किया। व्यास जी समाधि में बोलते जाए और भगवान गजानंद लिखते जाए। लिखते लिखते 18,000 श्लोक, जिसके 12 स्कंद बने, 335 अध्याय बने, वह ग्रंथ हुआ श्रीमद् भागवत। भागवत के 4 नाम, एक तो श्रीमद् भागवत, दूसरा भागवत महापुराण, 17 पुराण एक भागवत, भगवत रस से, भगवत सुख से, भगवत माधुर्य से, भगवत तत्व से भरा हुआ और जीवों को हंसते खेलते ध्यान ज्ञान गोपियों की नाए, गोपी का अर्थ है योगी समाधि करता है तब परमात्मा शांति का सुख पीता है, लेकिन गोपियां खुली आंख रस पी रही है। गोप और गोपियों की विशेषता है कि इंद्रियों के द्वारा भी वह भगवत रस भगवत आनंद पा रहे हैं। तो गोपी गीत का वर्णन आता है भागवत में, वेणु गीत का वर्णन आता है,
भिक्षुक गीत का वर्णन आता है। गीत गाते गाते समाधि का सुख,
गा रहे हैं गीत और योगी तो आंख मूंदो, कान चुम बंद करो, समाधि करो, सन्नाटे में रहो, तब रस पाते हैं। लेकिन ये गीत गाते गाते भगवत रस पाए,
ऐसा ग्रंथ है। इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। तीसरा नाम है परमहंस संहिता। शुकदेव जी मुनि इतने उच्च कक्षा के समाधि निष्ठ महापुरुष कि जब चलते जा रहे हैं तो पिता व्यास जी, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो पुत्र, तो शुकदेव जी आत्म भाव से संपन्न थे, उनके बदले में वृक्षों ने उत्तर दिया। और शुकदेव जी को भूख लगती तो वृक्षों के आगे पात्र कर देते, तो निफल वृक्षों से फल उभरते और उसकी भिक्षा पात्र में पड़ते। ऐसे समर्थ योगी उनको क्या पड़ी है। फिर भी भागवत जब लिखा गया तो व्यास जी ने देखा कि इसका बयान कौन, वर्णन कौन करे, जो अपने शिष्यों को श्लोक कंठस्थ करा है। वन में विचरण करते जाओ और ऐसे ढंग से श्लोकों का गान करो कि शुकदेव जी के कान पड़े, जो सब त्याग के समाधि में बैठे हैं वो समाधि त्याग कर भगवान के लीला चरित्रों का गान करने में सक्षम मेरे शुकदेव जी आ जाए। शुकदेव जी के कान पड़े ये भागवत के श्लोक, तो शुकदेव जी समाधि सुख छोड़कर श्रीमद् भागवत का पाठ करने और सुनाने में लग गए। इसलिए इसे कहते हैं परमहंस संहिता। शुकदेव जी जैसे परमहंस व्यक्तियों को भी इस भागवत की कथा से शांति, आनंद और ब्रह्मानंद में अभिवृद्धि होती है। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। तुम हरि कथा नहीं सुनोगे तो जगत की वार्ता सुनोगे। पति मर गया उसको याद कर करके दुख बढ़ाओगे तो आप तो दुखी होगे, घर में भी दुख का वातावरण हो जाएगा, मायूसी छा जाएगी। प्रसन्नता उभारो, खुशी उभारो। तुम चले गए, कुछ लेके नहीं गए, हमें संत दे गए, सत्संग दे गए, बहुत कुछ दे गए। आपका आत्मा अमर है, हमारा आत्मा भी अमर हो। आप संसार में फंसे नहीं और अपनी यात्रा पूरी करके भगवत चरणों में है, और हम भी यात्रा करते करते भगवत ध्यान में आ जाए। ओम आनंद ऐसा चिंतन घर के लोगों को करना चाहिए ताकि बच्चे बच्ची पुत्र और बहुएं भी उस ढंग से आनंदित रहे। हाय मेरा पति चला गया, या हाय मेरी पत्नी चली गई, हाय मेरा बेटा चला गया, हाय मेरा भाई चला गया, हाय हाय ना करो, हरि हरि करो। हरि को भजे सो हरि का होए। तो तीसरा नाम परमहंस संहिता। चौथा नाम है भागवत का कल्पद्रुम। जिस श्रद्धा से, जिस भावना से भगवत कथा सुनेगा, देर सबेर वह श्रद्धा वह भावना फलेगी। अहमदाबाद में माणिक चौक है, माणिकनाथ जोगी का वहाँ आश्रम था। अहमद को कर्णावती नगर का जलवायु जचा तो वो तीन दरवाजे जो अभी भी भद्रकाली के पास खड़े हैं उस बात की साक्षी दे रहे, उसने वहाँ तक का अपना कोट का घेरा कराया। माणिकनाथ को लगा कि ये अहमद का बच्चा क्या समझता है, हमारे आश्रम की भूमि भी हड़प करता है। अहमद के आदमी दिन भर दीवाल चुने और वो बाबा दिन भर साबरी मंत्र जपे, शाम हो तो गोदड़ी में से वो धागा, साबरी मंत्र जपते हुए गोदड़ी से, शाम हो तो गोदड़ी से धागा खींचे, उल्टत देव पलटत काया, उतराओ बच्चा गुरु ने बुलाया, पूरी दीवाल धड़ाक दो। रोज दीवाल चुनाई हो, सैकड़ों कारीगर लगे और रोज ये बाबा संकल्प करके गोदड़ी से और अपना साबरी मंत्र के सिद्धि के प्रभाव से दीवार। आखिर अहमद को पता चला, बाबा को पटाने में वो सफल हुआ। बाबा आप तो अल्लाह हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो ये, तो बाबा ने कहा कि अहमद का बच्चा तू क्या समझता है, तेरे पास राजदंड है या राजवैभव तो हमारे पास रिद्धि सिद्धियाँ हैं। कई राजे महाराजे की ऐसी तैसी करने का सामर्थ्य रखते फकीर। और हनुमान जी का नाम सुना है ना, हनुमान जी जैसे नन्हे हो जाते बड़े हो जाते वो अणिमा गणिमा सिद्धि भी हम रखते हैं, समझे। ये लोटे में हम घुस जाए, जैसे सुरसा के मुँह में हनुमान जी चल गए और वापस आए, ऐसे हम लोटे में जाकर वापस आ सकते। बोले सुभान अल्लाह बाबा दिखाया जाए ये कृष्णा। वो बेचारे माणकनाथ जोगी नन्हे हो और लोटे में घुसे तो इस हरामी ने ढक्कन मार दिया और खड्डा को गाड़ने लग गया। बोले क्या करता है? बोले बस बाबा, न होगा बांस न बजेगी बंसरी। अब तुम श्राप नहीं दे सकते, तुमने तो सिद्धियां दिखाने के बल में आकर दिखाई है, तो आपको गुरु का जो वरदान था वो बाधित हो गया। मैंने सारी जाँच की है, गुरु का स्मरण किया तो गुरु ने कहा बेटा मैं काशी में नहीं हूँ, अभी मैं कैलाश में हूँ, मेरा शरीर छूट गया है। गुरु शिष्य का संबंध शरीर छूटने के बाद भी रहता है, क्योंकि गुरु शिष्य का संबंध केवल शारीरिक संबंध तो भाई बहन पिता पुत्र का पति पत्नी का होता है, गुरु शिष्य का शारीरिक संबंध का महत्व नहीं होता, आत्मिक संबंध हो जाता है। शिष्य किसी भी लोक में जाए लेकिन गुरु का संबंध उसका अमर होता है। हाँ, निगुरा होके गया तो वो जाने, बाकी गुरु का मंत्र लेकर गया है तो फिर यम यम मनसा सभी भांति विशुद्ध सत्वे। समर्थ ज्ञानी गुरु अपने शिष्य के लिए जिस जिस लोक की भावना करे उस लोक में उसकी सदगति करने का उसका संकल्प काम करता है। एक नेता का टेलीफोन पूरे प्रांत में पूरे राज्य में काम कर सकता है, तो ब्रह्मवेता गुरु का पूरे ब्रह्मांड में संकल्प काम करता है। राजनेता तो बिल्कुल छोटी रेंज में होते हैं। वांजे नारायण नारायण नारायण। गुरु ने कहा बेटा ये अहमद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अगले जन्म में इस अहमद ने भगवत कथा में भाग लिया था। भगवत शांति के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, मुझे सत्ता मिले मेरा नाम हो। तो भगवत कथा जिस भाव से सुनी जाती है देर सबेर श्रोता को, श्रीमद् भागवत कल्पद्रुम के हिसाब से देर सबेर श्रोता को उस फल की प्राप्ति होती। तो इस अहमद ने अगले जन्म में भगवत कथा में रस लिया था, सेवा आदि की थी, उसके पुण्य प्रताप से ये राजा बनेगा, तो इसको आशीर्वाद दे। तब माणिकनाथ जोगी ने कहा कि अहमद ये कर्णावती नगर तुम्हारे नाम से अहमदाबाद नाम से बड़ा फलेगा फूलेगा, विख्यात होगा, उसमें आशाराम बापू भी आएंगे। ये मैं मिलावट कर दिया, जयराम जी की ये झूठी बात है, उसने नहीं कहा था, मैंने मिलाया तुमको हंसाने के लिए, जैसे पढ़ने लोग करते हैं ना इधर उधर की बात में फिर अपने मतलब की बात धर देते हैं, मैंने ये मतलब की बात धर दी बेईमानी की। तो वो अहमदाबाद नगर तेरे नाम से फलेगा फूलेगा, तूने अगले जन्म में भगवत कथा की सेवा की, भगवत कथा श्रवण मुक्ति के लिए नहीं लेकिन यश और सत्ता के लिए किया था, वो तेरा पुण्य फला है। आज भी वह जगह, अहमद ने कहा बाबा तो मैं आपको वचन देता हूँ, जब आप दुआ करते तो मुझे गुस्ताखी मेरी गुस्ताखी माफ़ हो, मुझे दुआ करते तो मैं भी वचन देता हूँ कि ये मैदान हम आपके नाम से ही रखेंगे, माणिकनाथ जोगी के नाम से ही माणिक चौक नाम रखेंगे। आज तक रिलीफ रोड के नाम बदल गए, तिलक मार्ग हो गया, लेकिन माणिक चौक का नाम बदलने की किसी की हिम्मत नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, क्योंकि फकीर की दुआ से जो नाम मिला है ना भाई। बाकी तो अहमदाबाद के कई सड़कों के नाम बदल गए, कई एरियाओं के नाम बदल गए, माणिक चौक अभी भी माणिक चौक है। तो भगवत कथा आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाली है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद्
भागवतम पुण्यम,
आयु आरोग्य पुष्टिदम,
आयु आरोग्य पुष्टिदम,
श्रवणात् पठनात् अपि,
श्रवणात् पठनात् अपि,
सर्व पापे प्रमुच्यते। श्रीमद् भागवत कथा आयु अकाल मृत्यु को टालने वाली है, आरोग्य प्रदायनी है। श्रवण मनन और सुनने से अकाल मृत्यु से तो पार होता है, लेकिन व्यर्थ के पाप तापमय चिंतन से अशांति से भी जीव बच जाता है।